أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، پیارے دوستوں، آپ سب کو میرا پیار بھرا سلام. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں احکام کے وشے پر آدھارت بات چیت کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام سے جس وشے کو اپنی بات چیت کا شیرشک بنایا تھا وہ تھا نماز کا سمے یا وقت نماز. اس میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ نماز کا سمے تین پرکار کا ہوتا ہے، یا ان کو تین بھاگوں میں بانٹا جا سکتا ہے. ایک سمے وہ ہوتا ہے جو نماز کا وشیش، نماز کا مخصوص سمے ہوتا ہے. دوسرا سمے وہ ہوتا ہے جو دو نمازوں کے بیچ کا یا دو نمازوں کا مشترک سمے ہوتا ہے، یعنی جس میں دونوں نمازوں کو پڑھا جا سکتا ہے. تیسرا سمے وہ ہوتا ہے جو فضیلت یا شریشتہ کا سمے ہوتا ہے. ہم اپنے اس پروگرام میں اسی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہاں تک ہماری بات چیت آئی تھی کہ ظہر اور عصر کا مخصوص اور مشترک سمے کیا ہوتا ہے. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں اس بات کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا. اب ہم آج کے پروگرام میں مغرب اور عشاء کے مخصوص اور وشیش سمے کے بارے میں بات چیت کریں گے، صبح کے وشیش سمے کے بارے میں بات چیت کریں گے، نمازوں کی فضیلت اور شریشتہ کے سمے کے بارے میں بات چیت کریں گے، اور اس کے بعد اگر ہمارے پاس سمے بچا تو ہم اس بارے میں بات چیت کریں گے کہ اگر کوئی ویکتی، کوئی انسان کسی کارنوش سمے سے پہلے نماز پڑھ لے تو اس کا کیا آدیش ہے، کیا حکم ہے، اور اس کا مسئلہ کس پرکار حل کیا جائے گا. تو آئیے ہم اور آپ مل کر اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو مخصوص اور مشترک سمے میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کا مخصوص اور مشترک سمے کیا ہے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان سے لے کر آدھی رات تک مغرب اور عشاء کا سمے ہوتا ہے، یعنی اس سمے کے بیچ میں آپ کو اور ہم کو اور ہر مسلمان کو مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو پہلی تین رکعت کا جو سمے ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی اذان ہو گئی اس کے بعد جو پہلی تین رکعت کا سمے ہوتا ہے، یہ وہ سمے ہے جو مخصوص ہے مغرب کی نماز سے، یعنی اس سمے میں عشاء کی نماز کو آرمبھ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد لاسٹ کی، یعنی اب آدھی رات ہونے میں صرف اتنا سمے بچا ہو کہ ایک ویکتی کیول چار رکعت نماز پڑھ سکتا ہو، تو اگر لاسٹ کی چار رکعت نماز پڑھنے کا کیول سمے بچا ہے تو یہ سمے وشیش ہوگا، مخصوص ہوگا عشاء کی نماز سے. یعنی اس سمے میں اگر تب تک کسی ویکتی نے کسی بھی کارنوش مغرب کی نماز کو نہیں پڑھا تھا، تو اب ان چار رکعت کے سمے میں مغرب کی نماز کو نہیں پڑھ سکتا ہے، بلکہ اس کی مغرب کی نماز قضا ہو چکی ہے، اس کو عشاء کی نماز پڑھنی ہوگی. تو پہلی تین رکعت کا سمے ہو گیا مخصوص، وشیش ہو گیا مغرب کی نماز سے، انتم چار رکعتی نماز کا سمے ہو گیا عشاء کے لیے. ان دونوں نمازوں کے بیچ کا جو سمے ہوتا ہے، پہلی تین رکعت کو چھوڑ دیں، انتم چار رکعت کو چھوڑ دیں، اس کے بیچ کا جو سمے ہوتا ہے یہ وہ سمے ہے جس کو مشترک سمے کہتے ہیں. یعنی اس سمے مغرب اور یہ وہ سمے ہے جسے مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو پڑھا جا سکتا ہے. لیکن اس بات کا دھیان رکھنا آوشیک ہے کہ جب بھی نماز پڑھی جائے مشترک سمے میں، تو پہلے آوشیک یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھی جائے، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی جائے. یعنی کرم کا دھیان رکھنا یہاں پر آوشیک ہے. اور اس میں ایک اور بات ہوتی ہے کہ ہم نے جو آپ کو بتایا کہ پہلی تین رکعت اور انتم چار رکعت نماز، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان یاتری ہوتا ہے، سفر پر گیا ہوا ہے، تو اس کی نماز قصر ہو جاتی ہے، یعنی اس کو وہ نمازیں جو چار رکعتی ہیں دو رکعت پڑھنی ہوتی ہیں. तो उसके लिए विशेष और मुश्तरक समय का आधार क्या होगा? तो जो यात्री है, जो सफ़र में है, जिसकी नमाज कसर हो चुकी है, उसके लिए 4 रकती नमाज का विशेष समय 2 रकत भर होगा। यानी क्या मतलब? यानी अगर इशा की नमाज़ पढ़ना है और अंतिम इतना टाइम से बचा है कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 रकत नमाज़ पढ़ी जा सकती है, तो ये 2 रकात उसके लिए विशेष है इशा की नमाज़ से, उस समय मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ सकता है। लेकिन वो व्यक्ति जो सफ़र पर नहीं है, जिसको पूरी 4 रकात नमाज़ पढ़नी है, उसके लिए 4 रकात नमाज का समय ही उसका विशेष समय होगा। इसमें एक बात और होती है, कभी कभी इंसान जानबूझकर, अगरचे करना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी जानबूझकर या भूले से या किसी कारणवश सो जाता है इंसान, या भूल गया किसी कारणवश, आधी रात गुजर जाती है तब तक वो इशा की नमाज़ और मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ता है। भूल गया इंसान, सोता रह गया, कुछ और मसला पेश आ गया तो नहीं पढ़ सका। अब उसके बारे में उसका क्या मसला है, क्या करे वो? क्या उसकी नमाज़ क़ज़ा हो गई है, वो दूसरे दिन पढ़े, या उसकी नमाज़ किसी और दिन पढ़े, क्या करे आखिर? तो यहाँ पर हमारे फुकहा, हमारे मुज्तहदीन, हमारे सम्मानीय मुज्तहदीन ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या भूले से या किसी कारणवश, जैसे सोता रह गया, अगर नमाज को आधी रात तक उसने नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि वो नमाज को आधी रात के बाद सुबह की अजान से पहले अवश्य पढ़ ले। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस समय वो नियत कर रहा है, वो अदा या कज़ा की नियत न करे, सिर्फ इस प्रकार नियत कर ले, जैसे कि मगरिब की नमाज़ पढ़ता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, या ईशा की नमाज़ पढ़ता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, अदा या कज़ा की नियत न करे। तो ये वो चीज़ थी जो मगरिब और ईशा के नमाज के बारे में विशेष और मुश्तरक समय था। उसके बाद सुबह की नमाज़ का समय आता है। सुबह की नमाज़ का समय केवल एक समय है, क्यों? क्योंकि उसमें एक ही नमाज है, कोई दूसरी नमाज नहीं है, इसलिए मुश्तरक समय का यहाँ पर प्रश्न नहीं उठता है। केवल एक ही समय होता है कि जब सुबह की अजान हो गई, यानी दूसरा जो फज्र होता है वो तुलू हो गया, उसके बाद से लेके सूरज के उगने तक, सूरज निकलने तक का समय होता है सुबह की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये वो चीज़ थी जो हमने आपको बताया किसी नमाज के विशेष और मुश्तरक समय के बारे में। और हमने आपको बताया था कि नमाज के समय 3 प्रकार के होते हैं। अब जो हमारी यहाँ से बात शुरू होगी वो है नमाज़ की फजीलत या श्रेष्ठता के समय के बारे में। श्रेष्ठता या फजीलत किसको कहते हैं? फजीलत का समय वो समय होता है कि अगर उस समय इंसान नमाज पढ़ ले, ईश्वर की आराधना करे और नमाज के लिए खड़ा हो जाए, तो ये वो समय है जब इंसान को सवाब अधिक मिलता है। ये वो समय, यानी फजीलत का समय वो समय है जब नमाज का सवाब ज़्यादा होता है। इसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे कि कोई फजीलत का समय कब होता है। तो सबसे पहले जो बात आती है जोहर का समय, जोहर की फजीलत का समय क्या है? जैसा कि हमने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जोहर का समय कैसे जोहर का समय हम कैसे जाने कि जोहर का समय आ चुका है। तो हमने आपको बताया था कि अगर एक शाखिस, जैसे कि हमने आपको मिसाल दी, जैसे पेन, हमने आपको मिसाल दी थी, ये पेन आपके सामने रखा, जब पेन किसी जगह पर गाड़ दिया जाए, या कोई इसी प्रकार की सीधी लकड़ी कोई चीज़ गाड़ दी जाए ज़मीन पर, और सूर्य जब पूर्व से निकलता है और एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जब इसका साया बिल्कुल कम हो जाता है, तो ये वो समय होता है जब जोहर का वक्त आ जाता है। यहाँ से जोहर की नमाज का समय आरंभ हो जाता है। अब यहीं से ध्यान रखने वाली बात है, जब किसी चीज़ का साया अपने अंतिम स्थान तक पहुंच जाए, उस शाखिस का, उस निशानी का साया अपने अंतिम स्थान तक पहुंच जाए, तो जोहर का समय आरंभ होता है। और इसके बाद से उस समय तक उसकी फजीलत और श्रेष्ठता का समय रहता है जब तक कि ये साया उसके उस भाग के उस बराबर ना हो जाए जितना बड़ा वो है। मसलन मान लीजिए कि हमारी जो शाखिस है, जो निशानी थी, वो 10 सेंटीमीटर की थी, तो अगर ये साया जो अंतिम समय पर 20 सेंटीमीटर आया था, अगर ये साया बढ़ते बढ़ते 120 सेंटीमीटर तक पहुंच जाए, 100 सेंटीमीटर था, 120 सेंटीमीटर पहुंच जाए, तो ये हमारा जो है फजीलत का समय निकल जाएगा। इसके बाद हमारा फजीलत का समय नहीं रह जाएगा। तो जोहर की फजीलत का समय ये है कि जो निशानी हमने आपके सामने लगाई थी जोहर का समय जानने के लिए, उसका साया उसी के बराबर मात्रा में पहुंच जाए। जब ये बराबर मात्रा में साया पहुंच जाएगा तो फजीलत का समय समाप्त हो जाता है, उसके बाद नमाज़ पढ़ सकता है लेकिन फजीलत नहीं रह जाती है। अब उसके बाद असर की फजीलत का समय आता है। यहीं से उसके बाद असर की फजीलत का समय शुरू होता है। असर की फजीलत का समय उस समय तक है जब ये साया जो भी एक बराबर हुआ तो दो बराबर हो जाए। अगर साया दो बराबर हो जाता है तो असर की फजीलत का समय समाप्त हो जाएगा। उसके अंदर जितना समय होगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी समय हो, ये वो समय होगा जो असर की नमाज की फजीलत का समय होता है। उसके बाद जो चीज़ आती है वो मगरिब की, मगरिब की फजीलत का समय क्या है? तो मगरिब की फजीलत का समय यह है कि जब सूरज डूब जाता है, अजान के बाद से उस समय तक मगरिब की फजीलत का समय रहता है जब तक कि वो जो पश्चिम में जो एक लाली होती है क्षितिज के ऊपर, जब तक ये लाली बाकी रहती है तब तक मगरिब की फजीलत का समय रहता है। लेकिन जैसे ही वो लाली समाप्त हो जाए, मगरिब की फजीलत का समय समाप्त हो जाता है। उसके बाद इशा की समय बात आती है कि इशा की फजीलत का समय क्या है। इशा की फजीलत का समय जब मगरिब का समय समाप्त होता है, यानी वो क्षितिज से जब लाली समाप्त हो जाती, उस समय से लेके अगर रात को 3 भागों में बांटा जाए तो जो 1/3 भाग होता है उस समय तक इशा की फजीलत का समय रहता है। 1/3 भाग तक इशा की फजीलत का समय है, उसके बाद फजीलत का समय समाप्त हो जाता है, लेकिन मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ने का समय बाकी रहता है। उसके बाद आते हैं सुबह का, कि सुबह के फजीलत का समय क्या है। सुबह की फजीलत का समय यह है कि जैसे ही दूसरी फज्र हो जाए, यानी अजान का समय हो जाए, उसके बाद से उस समय के अंदर अंदर पढ़ लिया जाए जब तक के साया खुल ना जाए, यानी क्या मतलब, यानी रोशनी फैल ना जाए, यानी अभी सुबह नहीं हुई लेकिन रोशनी फैल जाती है, उस रोशनी के फैलने से पहले तक सुबह की नमाज़ को पढ़ना अधिक फजीलत रखता है। और इन समय में अगर कोई नमाज़ पढ़ता है तो उसकी नमाज का सवाब ज़्यादा हो जाता है। तो ये वो चीज़ थी जो हमने आपको नमाज के समय के बारे में बताई। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वो समय हैं जो हमारी यौमिया या रोज़ाना की नमाज के बारे में है, यानी जो हमको रोज़ नमाज पढ़नी, उसकी फजीलत का समय, उसका मुश्तरक समय, उसका मखसूस समय, ये हमने आपके सामने बताया। लेकिन हमने आपको प्रोग्राम के आरंभ में ये बताया था कि नमाज दो प्रकार की होती हैं। एक नमाज वो होती है जो रोज़ाना पढ़नी होती है, जैसे कि हमने बताया सुबह, जोहर, असर, मगरिब, इशा, जो पंजगाना नमाज़ें हैं रोज़ाना पढ़नी होती हैं। उसके अलावा जो कुछ नमाज़ें ऐसी होती हैं जो किसी कारणवश, किसी घटना की वजह से, किसी और वजह से नमाज वाजिब होती, इन नमाज़ों का समय क्या है। तो जैसा कि इसके नाम ही से स्पष्ट है, चूँकि इन नमाज़ों का कोई समय निश्चित नहीं है, नमाज ही किसी घटना की वजह से होती हैं, किसी कारणवश होती हैं, तो इनका समय भी कोई निश्चित नहीं है। जैसे सूरज ग्रहण की नमाज है, जलजले की नमाज, ये नमाज़ें आयात हैं, ये इस प्रकार की जितनी नमाज़ें हैं चूँकि ये किसी घटना के कारण होती हैं, इसलिए इनका समय वही है जब वो घटना हो, यानी नमाज अगर सूरज ग्रहण के कारण नमाज आयात वाजिब हो रही है तो इसका समय भी वही है जब सूरज ग्रहण हो रहा हो। चाँद ग्रहण की अगर चाँद ग्रहण के कारण नमाज आयात वाजिब हो रही तो इसका समय भी वही होगा कि चाँद ग्रहण जब हो जाए, जब चाँद ग्रहण होगा तो इसका समय आरंभ होगा। या जैसे नमाज मैयत है, नमाज मैयत चूँकि एक घटना के कारण, एक इंसान के मर जाने के कारण वाजिब होती है, लिहाजा ये उसी समय वाजिब होगी जब कोई व्यक्ति मर जाए तो उसके बाद से उसका समय आरंभ होगा। और तमाम मुस्लिमीन के ऊपर वाजिब है कि वो किसी मुसलमान के बारे में अगर वो मर जाता है उसको सूचना प्राप्त करते हैं, उसकी नमाज में शिरकत करें और नमाज पढ़ें। जैसा कि हमारे फुकहा ने बयान किया है कि ये नमाज़ किफ़ाई है, यानी किसी अगर कुछ लोग पढ़ लेते हैं दूसरे के ऊपर से इसका वाजिब साकित हो जाता है। इसके बाद जो बातचीत आरंभ होती है वो बातचीत ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश, भूले से, अनजाने में, समय की जानकारी ना होने की वजह से इंसान कभी कभी नमाज को उसके समय से पहले पढ़ लेता है। तो उसके बारे में मसला क्या है, उसके बारे में हम मसला, चूँकि अभी समय समाप्त हो रहा है लिहाजा हम इसके बारे में मसला किसी अपने अगले प्रोग्राम में बताएंगे। अब इनका इस प्रोग्राम में हमने आपके सामने बयान किया उसका सारांश आपके सामने पेश कर देते हैं। हमने अपने इस प्रोग्राम में 2-3 बातों को बयान किया। पहला यह कि मगरिब और इशा का वो क्या है, मखसूस और मुश्तरक समय, और ये बताया कि मखसूस समय में सिर्फ उन्हीं नमाज़ों को पढ़ा जाएगा जिन नमाज से मखसूस है, मुश्तरक समय में दोनों नमाज़ों को पढ़ा जा सकता है। और हमने आपके सामने ये भी बताया कि फजीलत का समय क्या होता है और फजीलत कहते किसको हैं। फजीलत उस चीज़ को कहते हैं कि अगर इंसान उस समय में नमाज को पढ़ता है तो उसका सवाब अधिक हो जाता है। इसके बाद भी हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा, तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।